बड़ा भाग्य क्या है? सबसे बड़ा भाग्य तो यही कि जब हमारी 5000 वर्ष की यात्रा पूरी होने को आई तो साथी कौन मिल गया? भाग्य विधाता ही हमारा हो गया। सबसे बड़ा भाग्य है जिसके बाप के ही हाथ में हो भाग्य की रेखाएं खींचना, माँ के हाथ में हो कैसे खींच देंगे बताओ माताएं, कैसे खींचेंगे, क्या क्या लिखेंगे, कैसे रहें बच्चे, सुखी रहें, शांति हो, कैसे हो, हैं, धनवान हो और चरित्रवान हो, बुद्धिवान हो, सुखदाई हो, अच्छे से अच्छा लिख देंगे ना। कहीं भी कहते हैं ना इसकी आयु की रेखा कट गई है, भाई कटे ही नहीं, ना आयु की रेखा ना भाग्य की रेखा। अब वो बाबा के हाथ में तो है ही, पर जो कुछ माँ बाप के हाथ में होता है वो बच्चों को भी थमा देते हैं, तो कलम किसके हाथ में दे दी? हम सबके हाथ में दे दी। खींचो भाग्य की रेखा, जितनी चाहे जैसी चाहे बना लो। तो कैसी बना रहे हैं सेवादारी, बताओ बताओ, सोचना है ना, कैसी बना रहे हैं? दो उत्तर, अच्छे अच्छे उत्तर दो। आप सभी अच्छा भाग्य बना रहे हैं। संगम युग ऐसा युग आया है, इस पे अगर चिंतन किया जाए, जो कुछ चारों युगों में नहीं देखा वो बोलो। आज बाबा ने क्या कहा, योग बल से तुम अपनी आयु बढ़ाना चाहते हो, क्यों? जीते रहे ना पूरा संगम। बाबा ने कहा जो चले गए उनकी चिंता ना करो कि वो योग करते थे या नहीं करते थे। आयु इसलिए बढ़ाते हैं कि संगम पर सब कुछ देख कर जाएं, क्योंकि अंतिम जो सीन होंगे, अंतिम सीन माना एक दो दिन का नहीं, कम से कम 10 साल के सीन, वो सारा भागवत रिपीट होगा प्रैक्टिकल में। जो शुरू में हुआ साक्षात्कार की धूम चली वो आज ही था ना, शायद बाबा अपना अनुभव सुना रहे थे, आज ही था। सोता था तो लगता था उड़ गया हूँ कहीं, बनारस चला गया तो बगीचे में बैठ के कुछ कुछ निकाल रहा हूँ, क्या हो रहा है मुझे, ईश्वरीय अनुभूतियां थी, शुरुआत थी। शिव बाबा प्रवेश करते थे थोड़ा थोड़ा, सारा नहीं कर सकते, सारा माना पूरा समय नहीं कर सकते, क्योंकि इतनी महान शक्ति अगर किसी के यहाँ बैठे ब्रेन में तो संभव नहीं लंबे समय तक बैठ सके, उसके लिए ब्रेन को बहुत पावरफुल भी होना चाहिए। इसलिए शिव बाबा ने कहा था मैंने ब्रह्मा को पहले धीरे धीरे तैयार किया, ब्रेन को भी शक्तिशाली बनाया, पवित्र भी बहुत बना दिया। एक मुरली में तो गुह्य बात कह दी थी, वो बात शायद ही कोई नोट करता हो, कैच करता हो। मैं इसके तन में आया, बैठकर इसको वाइब्रेशंस दे दिए तन में और इसकी कर्म इंद्रियों को शीतल कर दिया, जो काम पुरुषार्थियों को लंबे समय में प्राप्त होता है, करना पड़ता है। कर्मेंद्रियों की शीतलता बहुत ऊंची स्थिति है, और बाबा ने कहा जब तुम इस अवस्था में पहुंच जाओ तो समझ लो सतो तक पहुंच गए, बस एक कदम आगे है। तो शिव बाबा ने ब्रह्मा को पहले ही क्षण दे दिया ये सब कुछ, तो बहुत सुंदर अवसर मिला है हम सबको, चिंतन करें इस अवसर पर। ऐसा अवसर कि हीरे मोतियों की खान के पास ले जाकर सबको खड़ा कर दिया कि भर लो जितना भरना है। बोलो कितना भरेंगे? हीरे हैं बहुत कीमती हैं, बोलो ना, बोलो थोड़ा, अंत तक चलते रहे, कितने भरेंगे? दो मुट्ठी, थैली या बैग हैं? क्या बोले? जोर से बोलो। बहुत सारे भाई, कितना भरेंगे? मकान ही वही बना देंगे। तो बाबा इसमें कहा करते थे कि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो पूरी खान के ही मालिक, जब बाप मालिक है तो बच्चे उसके अधिकारी हैं ना। कोई कुछ सोचेगा, कोई कितना सोचेगा, हम क्या ले रहे हैं? भगवान धरा पर आया, पुकार थी हमारी जन्म जन्म की, इच्छाएं थी हमारी जन्म जन्म की, तुम्हें देख लें। पहली इच्छा तो यही थी, बहुत सुख देकर गया था ना, तो इच्छा होती थी जिसने हमें बहुत कुछ दिया था वो है कैसा, देख तो लें। थी इच्छा भाइयों की? थी, अंतर मन में वो समाई हुई थी। भले ही दो युग बीत गए थे, सतयुग त्रेता, लेकिन द्वापर से वो सूक्ष्म इच्छाएं फिर जागृत हुई कि उसे देखें तो सही, उसके प्यार का, उसके एहसान का रिटर्न देने के लिए मंदिर बनाए, भक्ति पूजा पाठ तीर्थ सब किए। अब वो आ गया है, आ गया है, क्या ले रहे हैं हम? आज चिंतन कर लो, ऐसे ही तो नहीं बिता रहे इस युग को, उलझनों में ही, मोह ममता में ग्रस्त की समस्याओं में हैं। ये सब समस्याएं बहुत ग्रस्त तो उलझते जा रहे हैं आजकल, उसमें हम जीवन बिता रहे हैं या बाहर निकल आए हैं? जिन्होंने इस चक्रव्यूह से बाहर निकलना सीख लिया वो सुखी हो गए। चक्रव्यूह है, भले ही वो अलग था, ग्रस्त आश्रम है, इसको पवित्र प्रवृत्ति मार्ग बनाओ, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, बहुतों का ग्रस्त चक्रव्यूह बनता जा रहा है। जो उसमें फंस गए वो तो सदा के लिए फंस गए मृत्यु तक, और जो उससे बाहर निकलना सीख गए वो बुद्धिमान। कैसे निकलेंगे इन उलझनों से बाहर? बोलो, सहज विधि। छोड़ने की बात तो बाबा ने बंद करा दी कि बच्चों को छोड़ के भागो जंगल में, काम धंधा छोड़ो, चलो हटो, हमें नहीं करना तुम्हारा, तुम बीमार रहो या कुछ भी, रोते रहो, रो, हम तो चले, ये तो बंद करा दिया। देखो कितनी कठिन मंजिल है, सन्यासी छोड़ कर गए तो भी नहीं हो पाए, वो आप सब नहीं जानते, हम तो जानते हैं, पवित्र भी नहीं हो पाए। कुछ मिला ही नहीं जिसके लिए घर छोड़ा था, मोह ममता छूटी नहीं, और यहाँ बाबा कहता है ग्रस्त में भी रहो, नौकरी भी करो और छोड़ दो मोह ममता, ये मार्ग कठिन या वो? बोलो, कठिन ये है, पर क्योंकि राह दिखाने वाला ज्ञान का सागर है, इसलिए राहें सरल कर दी हैं। तो सोचना है ग्रस्त की उलझनों से कैसे निकलेंगे। पहली चीज नोट कर लो लिखने वाले, स्थिति श्रेष्ठ होगी तो परिस्थितियां बदल जाएंगी। जब विश्व का कल्याण करने वाले क्या वो अपने घरों का नहीं कर सकेंगे? जो सबको सुख शांति देने वाले क्या वो अपने घर में नहीं दे सकेंगे? थोड़ा सा डिटैच होकर अच्छे अभ्यास करने हैं, रोज मुरलियों में अच्छे अभ्यास आ रहे हैं। आजकल भी आ रहा है एक, आत्मा देखना, याद है? इससे तुम्हारी कट उतरती जाएगी, कितनी गहरी बात है। योग से तो विकर्म विनाश होंगे ही, पर अपने को आत्मा देखना और दूसरों को आत्मा देखना, इससे भी बोझ हल्का होता जाएगा। स्वनान के अच्छे अभ्यास हो तो ग्रस्त जंजाल नहीं रहेगा। हो क्या रहा है बहुतों के साथ कि उलझ गए हैं कुछ कारणों से, अब निकल नहीं सकते, लेकिन जीवन ऐसा जिए, जो उलझे नहीं है वो सीख लें, जीवन ऐसा जिए कुछ अलौकिक अभ्यास चलते ही रहें। जिस घर में रोज अमृत वेले ज्योति जगती हो, वहां विघन नहीं रहेंगे। जहाँ भगवान का आह्वान होता हो, जहाँ उसको भोग लगता हो, वो सचमुच तीर्थ बन जाएगा। ये करना है, ये बिना किए नहीं होगा। चित्त को स्वयं शांत करना है, औरों को बदलने की बजाय अपने को बदलना है। महान एक भी घर में हो ना, किसी शहर में एक महान पुरुष होता था, उसके कारण उस सारे नगर की वैल्यू रहती थी, महत्व तो होता था। ये भक्ति में भी हुआ, 100 साल पहले तक खूब चला यही। हर घर में कोई ना कोई अच्छा व्यक्ति, हर गांव में कोई ना कोई अच्छा व्यक्ति, हर शहर में कोई महान व्यक्ति, पवित्र आत्मा अवश्य होते थे। होते थे या नहीं जो बुजुर्ग बैठे हैं? होते थे। जिस घर में एक इस देवी हो, जिस घर में एक योग लगाने वाला हो, जिस घर में एक मास्टर ज्ञान सूर्य हो, वहां अंधकार होगा। ये अभ्यास करने हैं, अभ्यास करने हैं। ये सुनने से काम नहीं हो जाएगा, ये अभ्यास करेंगे। घर में रहते अभ्यास करो, मैं इस घर की इष्ट देवी हूँ, मैं इस घर में मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। फैलने लगेगी लाइट, विघन हटने लगेंगे, परिस्थितियां बदलने लगेंगी, समस्याएं नष्ट होंगी। समस्याओं से लड़ रहे हैं, लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको मास्टर सर्वशक्तिवान की कुछ बातें सुना देता हूँ, जहाँ से मैंने शुरू की ये यात्रा समस्या समाधान की, बहुत पहले से 35 साल कम से कम। पहली बात सुनी थी ये 40 साल पहले सुनी थी। समस्याएं और कुछ नहीं, कमजोर मन की रचना है। बहुत सुंदर डेफिनेशन थी, भोग के एक संदेश में थी गुलजार दादी के द्वारा। क्या है समस्याएं? तो कमजोर मन अगर समस्याएं पैदा करता है तो समस्याओं का हल क्या हो गया? बोलो, शक्तिशाली मन। और शक्तिशाली मन का एक ही मंत्र है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। ये तो मुरलियों में आता ही रहता है, स्वमान बहुत आता है, सबसे ज्यादा। दूसरी बात सुनी, ये रहस्य हैं जो हमारे जीवन को महान बनाएंगे, आपको ग्रस्त के चक्रव्यूह से ऊपर ले जाएंगे। ग्रस्त में रहते हुए ग्रस्त पर आपकी पवित्र छाया पड़ेगी, सुंदर वाइब्रेशंस पड़ेंगे। दूसरा महावाक्य, जो बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान के नशे में रहते हैं, विघ्न और समस्याएं उनके पास आ नहीं सकती। देखो एक ही महावाक्य में कितने रहस्य हैं, क्लियर है ना? विघ्न और समस्याओं को ना आने देना है तो क्या नशा रखना है? बोलो पीछे वाले, क्या नशा रखना है? मैं, बहुत अच्छी फीलिंग के साथ हूं मैं, ये कोई मंत्र नहीं है जिसको रट लिया जाए और काम हो जाएगा। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, इसका दूसरा अर्थ होता है मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। डरने वाले नहीं, छोटी बातों में घबराने वाले नहीं, क्योंकि डर भी संसार में बहुत बढ़ रहा है, डर बहुत बढ़ रहा है। और जिस दिन विनाश शुरू हो गया, भूकंप, भय ही भय फैल जाएगा धरा पर, जिंदे लोग डरते ही रहेंगे, मौत के समान हो जाएगा जीवन। अभी देखो छोटा सा हुआ ना गुजरात के उधर, कैसा लोगों में भय हुआ, पता नहीं क्या होने लगे। तीसरा महावाक्य, बहुत बड़ा राज तीसरे महावाक्य में, ध्यान से सुन ले, सबके लिए इम्पोर्टेंट। जवात्माए मास्टर सर्वशक्तिवान के नशे में रहती हैं, सफलता उनके आगे पीछे घूमती है। सफलता कितनी बड़ी आवश्यकता है हर मनुष्य की, हर मनुष्य की आवश्यकता है। एक व्यक्ति आया मेरे पास कल मिलने, परसों मैसेज आया कि भाई वो परिवार है, रहना चाहता है, डीएम भी साथ में आ रहा है, डीएम माना कलेक्टर। तो हमने उनको एक रात के लिए जगह दिलाई, अगले दिन 8:30 बजे का टाइम रख दिया, आ जाओ। मैंने अपना कमरा भी थोड़ा सजा लिया, भाई कलेक्टर मिलने आ रहा, कुर्सी उर्सी ठीक कर दी। भाइयों के कमरे तो ऐसे ही पड़े रहते हैं ना, माताओं के जरा सजे सजाए रहते हैं। आ गए वो मिलने, हमें पूछ रहा भाई डीएम साहब कहाँ हैं। अभी वो भी कुछ उत्तर नहीं दे रहे, परिचय होने लगा। ये मेरी युगल है, मैं, दोनों ऐसे लगते थे आदिवासी, चेहरा भी ऐसा ही तो रंग भी ऐसा ही, कपड़े भी ऐसे ही। अच्छा परिचय, एक मैं डीएम साहब का ड्राइवर हूँ, दूसरा मैं पीए हूँ, फिर डीएम कहाँ है। तो तीसरे ने उत्तर दिया, मैंने ही IAS किया है भाई जी, और YouTube पे आपके ये जो प्रोग्राम है ना, मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसको करते करते मैंने IAS कर लिया पिछले साल। मैंने कहा देखो, और वो उसको देखकर आप कह नहीं सकते कि ये किसी के ड्राइवर से कोई बड़ा होगा। सिंपल, मैंने कहा बहुत अच्छा, आपको बड़े बड़े काम करने, गरीबों की सेवा करनी, वो सेवा भावी है बहुत। छोटा ऑफिसर था, कलेक्टर से मिलना होता था 2-4 से, तो उनसे पूछा मैं भी बन सकता हूँ क्या कलेक्टर, उन्होंने गाइड कर दिया थोड़ा, और फिर ये यूट्यूब देखने लगे तो सफलता हो गई। तो जो मास्टर सर्व शक्तिवान के नशे में रहते हैं, अब देखो उन लोगों के लिए तो नशा भी नहीं है, उन्हें तो केवल पता है कि ये कुछ बताया है इसे कर लो, और हमारे लिए है बहुत बड़ा नशा। सफलता आगे पीछे घूमेगी, इसके तो लाख अनुभव हो गए होंगे विद्यार्थियों को, इंटरव्यू में नौकरी नहीं मिल रही है, एग्जाम क्लियर नहीं हो रहे। मैंने पीछे भी सुना था एक का बहुत अच्छा, जयपुर का, हाँ जयपुर का एक लड़का इंजीनियरिंग में 3rd ईयर तक, पता नहीं कितनी मैंने उस दिन सुनाई थी, 14 में बैक आ गई, फेल मतलब दोबारा एग्जाम देना, और फाइनल ईयर 4th साल। अब वो ये नेट देखता था बहुत, नेट देखने वालों को मैं बहुत सावधान करता हूँ, नेट मोबाइल पे लगे रहते हैं ना लैपटॉप पे, फेल होता गया। अब 4th साल परेशानी उसको, अब क्या होगा मेरा। मिली वो बहन ब्रह्मा कुमारी है, वो वहाँ उनके कॉलेज में अच्छी पोस्ट पर है, उसके पास वो आ गया, किस तरह उसने उसको सिखाई अच्छी बातें। अब आप हैरान होंगे कि 4th ईयर में न केवल उसने फाइनल एग्जाम क्लियर कर लिया, बट 14 पेपर भी क्लियर कर दिए, इतना जबरदस्त रिजल्ट हुआ। तो ये इतनी बड़ी चीज है, कौन हूँ मैं। चौथी बात सुनो, चौथी तीसरी चौथी, ये सुन ले फिर करेंगे। जो मास्टर सर्व शक्तिवान के नशे में रहते हैं, वे संकल्प से ही सब कुछ कर सकते हैं। इस चिंतन करते हुए योग करना, फिर आगे बढ़ेंगे। तो बात हुई जो मास्टर सर्व शक्ति दीवान के नशे में रहते हैं, वे बोलो संकल्प से ही सब कुछ कर सकते हैं। समाधान प्रोग्राम शुरू करने से बहुत साल पहले से मैं इस पर बहुत प्रयोग कराता था। कहीं बहुत बारिश हो रही है, बंद ही नहीं हो रही, बंद करने के लिए संकल्प, और कहीं हो नहीं रही तो होने के लिए संकल्प। बहुत अच्छी सफलताएं लोगों को हुई। चौथी बात, ये तो सबसे पावरफुल है जो भविष्य के लिए है, जो मास्टर सर्वशक्तिवान बन जाएंगे, एक दिन आएगा संसार उनके चरणों में झुकेगा, बन जाएंगे। माना इतने पावरफुल बन गए, माया पर संपूर्ण विजय। परिस्थितियां डरने लगी, पावरफुल शेर पावरफुल होता है, सब डरते हैं ना। हम पावरफुल हो जाएंगे तो माया और परिस्थितियां दूर चली जाएंगी। तो बहुत अच्छा अभ्यास सभी किया करेंगे, कौन हूं मैं, ये संकल्प करते ही एक दृश्य बनाएंगे, विजन, कि मेरे अंग अंग से शक्तियों की लाल किरणें फैलने लगी, आंखों से भी, मस्तक से भी, अंग अंग से, और मेरे चारों ओर क्या बन गया, और पावरफुल प्रभा मंडल। इस प्रभा मंडल में चला करें कुछ देर, जो घूमने वाले हैं घूमने जाते हैं, या घर में कमरों में क्लास में, इस प्रभा मंडल में बैठा करें। ये प्रभा मंडल आत्मा के साथ परम धाम में भी होता है, इसलिए जहां तक एक आत्मा का प्रभा मंडल है उसके बाद ही दूसरी बैठेगी, ऐसे नहीं बिल्कुल चिपकी हुई बैठी होंगी। आभा मंडल है, हर एक के वाइब्रेशंस हैं, वो फैले रहेंगे, उसके बाद दूसरी का स्थान होगा। तारे भी हैं ना, हमें तो दिखते हैं पास पास हैं, पर बहुत दूर हैं। एक का फोर्स जहां तक काम कर रहा है, दूसरा उसके बीच में नहीं आ सकेगा, उसके बाद दूसरा होगा। तो हम मास्टर सर्वशक्तिमान है। घरों में, अगर मैं घरों की बात कह रहा हूं, इस नशे में रहकर आप किसी को देखेंगे आत्मा, तो उसको शक्तियों की किरणें मिल जाएंगी। किसी कमजोर आत्मा को देखेंगे उसको ताकत मिल जाएगी। यह है शक्तियों का दान करने की विधि। तो हम भी बहुत शक्तिशाली बनते जाएंगे और हमारे चारों शक्तियों की किरणें भी फैलती जाएंगी। विनाश काल में यह स्थिति बहुत ही मददगार सिद्ध होगी। जहां तक हमारे वाइब्रेशंस फैलेंगे, प्रकृति सुरक्षा करेगी। विनाश तो करेगी ही, पर सुरक्षा भी करेगी, सहजता हो जाएगी। तो अपने को ऐसा शक्तिशाली बनाना है तो गृहस्थ में रहते हुए थोड़ा ऊपर उठ जाएं, आत्मिक भाव धारण करें। बहुत इंपॉर्टेंट धारणा है हम सबकी, आत्मिक भाव। करेंगे ये सभी साधना, सब आत्माएं हैं। घर में आपके पांच लोग हैं, तीन हैं, आठ हैं, ये सब आत्माएं। वृत्ति बनाओ, इसको कहते हैं वृत्ति। चाहे आप उन्हें आत्मा देख नहीं रहे, वो आपके पास नहीं है, वो अपने अपने काम पर गए हुए हैं, लेकिन ये सब आत्माएं हैं। हमारा परिवार अच्छी आत्माओं का ईश्वरीय परिवार है। ध्यान दे, मैंने क्या कहा, अच्छी आत्माओं का ईश्वरीय परिवार है। एक एक ये संकल्प आपके परिवार में सुंदर वाइब्रेशन फैलाएगा, एक एक संकल्प। और अगर आपने ये संकल्प रखे, पति कैसा है, बहुत तंग करता है, ये बच्चे तो पता नहीं कहां से बिच्छू टिंडन पैदा हो गए, भगवान ठीक कहता है, सास अरे कहां, पता नहीं मैंने क्या पाप किए थे, इनके घर में आ गई, तो क्या होगा, बताओ क्या होगा, वाइब्रेशंस पूरी तरह निगेटिव। और जैसा आप उनके लिए सोच रहे हैं, और भी एक प्रैक्टिकल बात, वैसा ही व्यवहार वो आपसे करेंगे। करके देख लो प्रयोग सभी अपने घरों में, और आप सोच लो हमारा परिवार बहुत अच्छा, सब बहुत अच्छी आत्माएं, ये ईश्वरीय परिवार, सब भगवान के बच्चे, सभी सुखी रहें, सबका कल्याण हो जाए, फिर देखना उनका व्यवहार। जो भाई बहने कहते हैं हमारा विरोध होता है परिवार में, ये लोग हमारी बात नहीं सुनते, वो सब ये प्रयोग करके देखें, पर बात नहीं सुनते इस पे ध्यान दें। हमारी बात अच्छी भी तो होनी चाहिए जो दूसरे सुने, ठीक कह रहा हूं मैं? अब बहन जी सदा ही ऐसी बात सुनाती रहती हो जो सुनने में भी अच्छी न लगती हो, तो सुनने वाला क्या कहेगा? अच्छी बातें अच्छे शब्दों में अच्छे समय पर सभ्यता पूर्वक सुनाना चाहिए, ये बाबा ने हम सबको सिखाया है। तो अपने स्वमान को बढ़ाएंगे, वृत्ति को बहुत आत्मिक करेंगे, और सबसे बड़ी साधना है संगम योग की, जो समय भी लेती है, चित्त को शांत करना। काम करेंगे इस बात पे सभी, चित्त को शांत करना। बहुत कुछ हम सारा दिन देखते हैं, बहुत कुछ हमारे विरुद्ध होता है, बहुत कुछ वो होता है जो होना नहीं चाहिए, उस सब में चित्त शांत करना, ये संपूर्ण ज्ञान की पहचान है। उत्तर मुरली में सबके हैं, सुन लिया होगा आपने जो ध्यान से सुनते हैं संडे की मुरली में, न चाहते हुए भी होते रहना और चाहते हुए भी न होना, ये निशानी है कड़े कर्मों के खाते की, पाप थोड़े ज्यादा हो गए हैं, इसलिए पापों को काटने के लिए योग बल बाबा ने दिया, योग सिखाया। फिर क्या होगा? जो हम अच्छा सोचेंगे वो होगा, जो नहीं सोचेंगे वो नहीं होगा, जो हम नहीं चाहते वो नहीं होगा, जो हम अच्छा चाहते हैं वो सहज होगा। ये सरलता, ये सहजता हमें दिखाई देने लगेगी। तो सभी अपने अपने परिवारों में अपने को बदलते चलें, और बहुत अच्छे नशे के साथ, कौन हूं मैं, इस नशे के साथ जीवन बिताएं। और मैं एक लास्ट बात और कह देता हूं आपको, चिंतन की है बात मामूली है, आपने शायद हजारों बार सुन ली हो, पर आज उस पर चिंतन करेंगे कि भगवान आकर हमारा साथी बना है। साथी देखो, तो जीवन में किसी को अच्छा साथ मिल जाए, पति पत्नी भी तो साथी है ना, अच्छे हो दोनों तो जीवन की यात्रा आनंदकारी, और अच्छे ना हो तो कदम कदम पर कठिनाई। हमें जीवन साथी मिला है ऐसा जो कहता है अब जिधर मैं चलूं उधर चलते रहो, मंजिल पर पहुंच जाओगे। मन पर कोई बोझ लाओ मुझे हल्के होकर चलो तुम, जहां मैं कदम रख रहा हूं वहीं तुम रखते रहना, तुम्हें कुछ सोचने की जरूरत नहीं, तुम्हारा जिम्मेदार अब मैं हूं, चलो मेरे साथ। है या नहीं यही बात? साथी बन गया है वो हमारा सच्चा साथी, गुड फ्रेंड, उसको साथ ले लेंगे, साथ रखेंगे, याद रखेंगे, जो भगवान था वो अब मेरा साथी बन गया है। अच्छा साथी मिलने पे जीवन में कितनी निश्चिंतता और कितनी खुशी होती है। लौकिक में देखो, साथी और भी दो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, उन्हें कमरा मिला है दो को, साथी अच्छा हो तो कितना अच्छा रहेगा, और साथी शराब पीने वाला, आजकल बच्चे मिलते हैं ना ऐसे, सिगरेट पीने वाला, रात रात नेट पे लगे रहने वाला, बातें करने वाला, न सोने दे न खुद सोए, तो जीवन खराब होता है। हमें ऐसा साथी मिला है जो हमारी जीवन नैया को पार लगाएगा, जो कदम कदम पर हमें साथ देगा, जो प्रीत की रीत निभा रहा है। बस याद रखना, भगवान हमारा गीत भी गाते रहना। ओम शांति।